ధ్యానం తస్మై శ్రీ గురవే మంచాకల్పతరుభ్యశ్చ పితాసింహభ్యైవ చ పతితానం పావనిభ్యో నమో మహావదన్నాయ కృష్ణప్రియమప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్యనమ్నే గౌరస్తుతే హే గౌరచంద్రాయ రాధికాయై తదాలయ కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ సద్భక్తాయ मथुरा वृंदावन से आया हूँ। पहले मैं इस्कॉन के मंदिर में ठहरता था, वहाँ के भक्त लोग सब आते थे, हरि कथा सुनते थे। इस बार मैं आप लोगों की छत्र छाया में उत्तरायण कॉलोनी में श्रद्धालु लोगों के बीच में आज अपने को पाकर के बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग हिमालय प्रांत के गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि के पवित्र धारा में रहने वाले पार्वती जी के देश के लोग, आप लोग बड़े पवित्र हैं। मैं सवेरे ही से आया, देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इन बच्चों का उत्साह देख करके मुझे बहुत आनंद। छोटी छोटी बच्चियां, पुरुष महिलाएं, सभी लोगों को मेरे आने से देखा जैसे उत्साह उमड़ रहा। मैंने सोचा कि मैं इस बार यहाँ आया, बहुत अच्छा किया। बहुत निकट से आप लोगों के साथ में मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। आज एक विशेष दिन है, आज गंगा जी आज ही के दिन में प्रकट होकर के एक विश्व में आई थी, पृथ्वी में धरातल में उतरी थी। आज जहां जहां भी गंगोत्री से लेकर उधर में रुद्रप्रयाग, विष्णु प्रयाग और देव प्रयाग इत्यादि होकर के गंगा जी उतरती हैं। मैं भी ये सब स्थानों में गया, बड़ा रमणीय स्थान, सब परम पवित्र स्थान। पैदल गया मैं आज से करीब करीब 45 वर्ष पहले, एकदम हरिद्वार से ही पैदल हम लोगों के साथ में गुरु जी के साथ में हम लोग 400-500 व्यक्ति थे। जो लोग नहीं सकते थे उनके लिए घोड़ा या कंडियां उस समय में, सब सामान कुलियों को दे करके निफिक्र होकर के निश्चिंत होकर के हम लोग चलते। सवेरे 4 बजे चल देते, 8-9 बजे तक कहीं पड़ाव हो जाता। इतना सुंदर रमणीय दृश्य, गांव के लोगों से मिलना, उनके व्यवहार इत्यादि परस्पर, सभी लोग मुग्ध हो जाते। अब वो यात्रा में वो सार नहीं रहा जो पहले था। कई सभी स्थानों को हम लोगों ने देखा था। गंगा नदी कितनी धाराओं में, कहीं गंगोत्री से आ रही है, कहीं केदारनाथ से उधर से आ रही, कहीं बद्रीनारायण की तरफ से आ रही, अनेक धाराएं सब अलकानंदा और कौन कौन सब भगीरथी इत्यादि सब जगह जगह। वहां पर प्रयाग, यहाँ पर तक इलाहाबाद में प्रयाग, वहां पर जगह जगह में ये सब प्रयाग, ऋषियों की सिद्ध मुनियों की वो तपस्या स्थली रही। वहीं पर शंकर जी की तपस्या स्थली है, जो भगवत भक्त जो हरि से अभिन्न कहा गया। तो गंगा जी ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से, ब्रह्मा जी के कमंडलू से सबसे पहले शंकर जी की जटा में वहां पर निकली और वहां से धीरे 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 उधर में आ गए। तो हम लोग सबसे पहले गंगा जी को आज प्रणाम करते हैं। गंगा जी हमारे हृदय को पवित्र करें। दूसरी बात, आज एक और भक्त का जन्मदिन है, उसके बदले में थोड़ा सा संक्षेप में बतलाता हूँ, उसके बाद में कुछ तत्व की बातें बतलाऊंगा। अभी 6-7 दिन 8 दिन 10 दिन रहना है, कल परसों से हम लोग विशेष रूप में कुछ हरी कथा का आज एक भूमिका के रूप में थोड़ा सा कह करके हम लोग समाप्त करें। आज ही के दिन में एक विशेष वैष्णवी का जन्म हुआ था बंगाल में, आज से करीब करीब 450 वर्ष पहले 400 वर्ष पहले भूटिया नाम के एक क्षेत्र में नरेश रहते थे राजा, उनकी लड़की थी। बचपन से ही बड़ी सुंदरी, समस्त उसमें गुण और भगवान के प्रति भक्ति थी। पिताजी ने कहीं से राधा गोविंद जी की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति ला दी। बचपन में उसी गुड़िया के बदले में उसी ठाकुर जी की मूर्ति के साथ में बोलती चालती खाती खिलाती थी, और धीरे धीरे मन ही मन में उसने उसी के साथ में अपनी शादी भी कर दी। धीरे धीरे पढ़ी लिखी, संस्कृत पढ़ी उसने में बंगाल में बंगाली, किंतु संस्कृत सबकी जननी है, संस्कृत भी पढ़ी, भागवत पढ़ी। उसके बाद में जब किशोरी हुई, बड़ी हुई, राजा ने उसकी शादी करना चाहा। मैंने शादी कर लिया, अब शादी मुझे नहीं करना। उसकी मैया ने, परिवार वालों ने, राजा ने, पिता ने, सब ने बहुत चेष्टा की इसकी शादी अच्छे बड़े राजा के यहाँ हो जाए, लड़के से राजकुमार शादी। अभी हमको हमारे जो प्राणनाथ हैं, कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, वही हमारे पति हैं, उनके पास में हमको वृंदावन में भेज दो। जब देखा उसकी जीत, अंत में पिताजी ने उसको किसी प्रकार से उसको वृंदावन में भेज दिया। उस समय के जो बड़े भाई संत थे वृंदावन के, गोविंद जी का मंदिर वहां पर है, आप लोग जब गए होंगे तो देखे होंगे, अपने किस्म का वो भारतवर्ष में एक विचित्र मंदिर है। औरंगजेब ने उसके ऊपर के तलाओं को तोड़ दिया, किंतु अभी 5 तल्ला भी है और वृंदावन का श्रेष्ठ मंदिर है, लाल पत्थर का, सब चित्रकारी सुंदर सब उसमें है। उसी में गोविंद जी का स्थान, वहीं के जो प्रधान संत थे उनके पास में आए। अभी किशोरी थी, 16-17 वर्ष की लड़की, किंतु परम वैराग्यवती थी और उनके पास में रोज भागवत सुनती, ऐसे सुंदर भागवत कहते, कृष्ण गोपियों की और यशोदा मैया की कृष्ण के साथ में जो लीलाएं हैं, वो अपने रोते और सबको रुलाते, लड़की भी उसके प्रेम में एकदम रोती रह जाती। कुछ दिनों के बाद में उसने कहा कि आप ही से मंत्र दीक्षा ले, मंत्र और दीक्षा भी उनसे दी। उन्होंने एक उनसे प्रौढ़ महिला के साथ में उसको रख दिया, इसके साथ में रहेगी और तुमको घर से घर घरों से जाकर के भिक्षा लेना पड़ेगा, एक जगह बना करके नहीं, जानते थे ये राजकुमारी है, पढ़ी लिखी है, सबसे गुणों में बहुत सुंदर है, चलो जाओ भिक्षा मांग लो, बिना हिचकिचाहट को, बिना लज्जा के। उसको जो देखे, उसको एक टुकड़ा देना है तो वो पूरा खाने का उसको लेकर के दे देता, उसकी बातों को सुनता, उसके रूप को देखता और देखा कि ये कैसी वैराग्यवती है और कृष्ण की कथा कहती है कितनी सुंदर, सब लोग मुग्ध हो जाते। जिस घर में जाती हूँ घर वाले सौभाग्य मानते, और उसको एक रोटी का टुकड़ा क्या उसे बहुत दे दो, किंतु वो लेती नहीं, बस जितनी जरूरत है बस उतनी ही एक टुकड़ा ले लेती, 5 घरों में जाकर के 5 रोटी का टुकड़ा लेकर के आती, इस तरह से जीवन निर्वाह करती। राजकुमारी किंतु साधारण कपड़े पहनती, साधारण रूप में रहती और जो कुछ हो भागवत सुनती, एकदम याद कर लेती। भागवत का इतना सुंदर सरस उसको व्याख्या आ गई, मन सुखदेव गोस्वामी जी जैसी व्याख्या कर रहे हैं, उन सब व्याख्याओं को अंदर से समझ करके और उसकी व्याख्या करते लोग मुग्ध हो जाते। थोड़े देर के बाद उन्होंने कहा राधा कुंड में चली जाओ, बस राधा कुंड में वो गई। राधा कुंड में 15 वर्ष तक रही, तब तक उसकी उम्र 40 वर्ष की हो गई। बड़े बयाज वहां कुछ मिलता नहीं है, राधा कुंड में किसी प्रकार से रह करके तपस्या करके भजन किया और उसका भजन निखरा। श्रीमद भागवत में 12 स्कंद हैं, जिसमें 9 अध्याय 9 उसमें स्कंदों में कृष्ण की कथाओं का विशेष नहीं, भक्तों का कुछ चरित्र, बड़े बड़े राजाओं का चरित्र, ज्ञान और वैराग्य की उत्पन्न करने के लिए ये कहा गया। और दशम स्कंद में भगवान के जन्म से लेकर के और अंत तक उनकी लीलाओं का वर्णन, और जिसमें अरापंच अध्याय, वेणु गीत, समर गीत, जुगल गीत इत्यादि जो है अद्भुत चीज है, उसको सुनने के अधिकारी बहुत जगत में दुर्लभ हैं। भक्ति का एकदम टॉप मोस्ट ऊपर में उसको सुनने वाले बहुत कम है जगत में। साधारण कथा सुनने लायक है सभी, किंतु गोपियों के कृष्ण के प्रति कैसा अनुराग है, यशोदा जी का कृष्ण के प्रति कैसा वात्सल्य भाव है, और उससे भी बढ़ करके गोपियों का, ललिता विशाखा इत्यादियों का कैसा निर्मल, और जगत में उनकी तुलना नहीं, बिना स्वार्थ का प्रेम उसमें वर्णन किया। सब उसको याद कर, जब कोई 40-50 वर्ष की हो गई और बड़ी विदेशी महिला हो गई, उन्होंने कहा जे जाओ तुम अब जगन्नाथपुरी में, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अंतिम दिनों में रहे, और वहां रह करके प्रताप रुद्र राजा के राज्य में साधम भट्टाचार्य थे, आप लोग ये सब नहीं जानते हैं, बड़े विद्वान थे भारतवर्ष में अपने समय में, अद्वैत बात के मैं ब्रह्म हूं इसके, महाप्रभु जी के संग से उनकी कथाओं को सुन करके वो परम वैष्णव हो गए, इसलिए वहां पर जाकर के तुम भक्ति का प्रचार करो और उस स्थान को फिर से चेताओ। तो वहां बढ़ गई, वहां पर जाने पर शाम को इसी ऐसे ही जगह में और खुले आम में, कोई टेंट फेंट कुछ नहीं, ऐसे मैदान में बैठ जाती और भागवत के श्लोकों को बड़ी सुंदर से मधुर भाषा में उसकी व्याख्या करती। अब बड़े बड़े लोग उसके सुनने के लिए आने लगे, संत लोग आने लगे, यहाँ तक कि राजा के कान में पड़ा वो भी आने लगे, भेष बदल करके बड़ा उसका नाम हो गया। अब वो धीरे धीरे उसकी प्रशंसा होने लगी। इधर में एक घटना हुई, वृंदावन में जयपुर में एक ठाकुर जी थे कृष्ण, उनका नाम था श्याम राय, श्याम राय मैंने कृष्ण ही है, बड़ी सांवली सुंदर मूर्ति, उन्होंने जो उनकी पूजा कर रहा था ठीक से पूजा नहीं करता था ब्राह्मण, उसको समय नहीं था और दक्षिणा लेने में ही उसको समय लग जाता था, ठाकुर जी के पूजा से कोई विशेष मतलब नहीं, जैसे आजकल करके ब्राह्मण भी कुछ ऐसे हैं, पूजा से मतलब नहीं है, दक्षिणा से जरूरत होती, ठाकुर को दर किनारे रख करके और ठीक से उनको पूजा नहीं करता था। ठाकुर जी ने कहा जैसे देखो तुम हमको जगन्नाथपुरी में एक भक्त है उसके पास में हमको दो, और यदि तुम नहीं जाता है देने के लिए तो तुमको हम सर्वनाश कर देंगे, हमारे वंश में कोई नहीं रहेगा, तुम अच्छी तरह से पूजा नहीं करते, उसको जाप दे आओ, जब नहीं लगी तो वही पास में एक वृंदा जी का बहुत सुंदर वन है उसी में तुम रख करके चल जाओ। टोकरी में ठाकुर जी को ले लिया, करीब करीब 350-400 वर्ष पहले की बात, और उसमें रेलगाड़ी इत्यादि नहीं थी, एरोप्लेन की तो बात ही थी, अब वो गरीब आदमी कहां से ले जाता, किसी प्रकार से चलता भीख मांगता हुआ वहां पर पहुंचा जगन्नाथ, वहां जाकर के पता लगाया जैसे यहाँ पर कोई महिला भक्त कौन है जिनका गंगा माता नाम है, लोगों ने बतला जी वहीं पर है, उनके पास में गई, गया वो और ठाकुर जी को लेकर के गया, जाकर के उनसे कहा ये ठाकुर जी ने हमको स्वप्न दिया जो तुम उसकी पूजा करना, इसलिए मैं आपको ठाकुर जी को लेकर के तुम्हारे पास आया हूं, तुम ठाकुर जी को लेकर के आज से तुम पूजा करो। उसने कहा जी इनकी सेवा तो यशोदा मैया नहीं कर सकती, वो नहीं कर पाती थी, ये मांग मांग करके इधर में चोरी करके मक्खन और ये सब खाते थे, मैं कहां से मक्खन और कहां से ये दूध और कहां से राबड़ी और ये सब चीजें ला, मेरे लिए संभव करना, मैं तो भिक्षा मांग करके लोगों से रोटी और किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करके मरण करती, ब्राह्मण ने बहुत कहा कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अंत में वहीं पर तुलसी जी का बन था, उसी में उसको रखा है ठाकुर जी को और अपने चले। रात में स्वप्न हुआ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया, आप तुम मेरी उपेक्षा कर रही हो, अरे देखो तो मैं कैसे पड़ा हुआ तुलसी के बनने और खाया नहीं कितने दिनों से, स्नान नहीं किया, तुम हमको खिलाएगी नहीं और स्नान नहीं कराएगी। उसका हृदय भरा आया और वो आकर के देखा तो सचमुच में श्याम सुलोनी छोटी सी मूर्ति अभी भी वहां पर है। वहां पर जब तो उसको उठा लिया, श्याम राम ने उनकी शादी किससे हुई, वही गोविंद जी ही श्याम राय है, तो ये हमारे ये तो प्रियतम है, इन्हीं के साथ में हमारी ले गई मंदिर में और उनको बैठा करके उनको स्नान कराया पंचामृत से, दूध दही घी बूरा और शहद खूब उन्होंने स्नान कराया। फिर समुद्र के पानी से, गंगा जी के पानी से, सब तीर्थों के जल से उनको स्नान कराया और अपने हाथों से रसोई बनाई और उनको भोग लगाया। तब से अभी आज तक वंश गुरु परंपरा की धारा से उनकी चलती आ रही। आज का दिन था, आज गंगा दशहरा है ना? आज ही के दिन में उसकी इच्छा हुई कि मैं आज गंगा में स्नान करने चल जाऊं। वहां से बंगाल निकल पड़ता है, इसलिए बंगाल में मैं जाकर के गंगा के घाट पर कहीं स्नान करके आऊं। संकल्प बहुत तीव्र किया और वहां से हजारों लोग गंगा को स्नान करने के लिए उधर गए, किंतु ठाकुर जी को छोड़कर के कैसे गया, नहीं गई। और रात में सोच रही हाय हाय हमने गंगा स्नान नहीं किया, ठाकुर जी के चरणों में ही तो गंगा है। करते करते जब रात हुई तो बड़ी जोर से कलकल शब्द ध्वनि हुई और देखा क्या, गंगा की अत्यंत सुंदर एक धारा वहां पर प्रकट हो गई। वहीं पर एक कुंड है, आज उसको श्वेत गंगा कुंड कहते हैं, जो जाएगा जरूर वहां पर जाएगा, पहले वहां दर्शन करके पानी लेकर के तब जगन्नाथ जी के बलदेव और सुभद्रा जी का दर्शन करता है। वहीं से वो धारा प्रकट हुई और देखा जाए लाखों लोग जय जगन्नाथ जी का जय देते हुए और गंगा में स्नान, जय पटिक पावनी गंगा की
जय,
ऐसे कहते हुए उसमें डुबकी लगा रहे हैं। ये ठाकुर जी की कैसी अद्भुत कृपा, आज हमारे ठाकुर जी के चरणों से ये गंगा निकल करके और ये कुंड में भर गई और वहां से ये पानी की धारा एकदम जगन्नाथ मंदिर में पहुंच गई। ये तब तक भी उसमें स्नान करने लगी और बड़ी खुशी कि आज गंगा जी हमारे यहीं पर प्रकट हो गई। और वो स्नान करते करते धारा में प्रवाहित होकर के बहते बहते एकदम जगन्नाथ जी के मंदिर में चली गई। ठाकुर जी का दरवाजा उसमें बंद था किंतु कैसे नहीं कैसे खुल गया, कैसे वो धारा पहुंच गया, कैसे ये भी पहुंच गई और इसको पहुंचते ही वो धारा ये कपाट बंद हो गया। उसका प्रतिदिन 10-15 जो पुजारियों के हेड होते हैं वो लोग अपने हाथ से ताला बंद करते हैं, बड़े बड़े ताले, और उस पर मुहर लगाते हैं। राजा का कोई एक व्यक्ति आता है और उस पर मुहर लगाता है, सवेरे जब आएगा 4 बजे तब फिर वो खुलेगा, दूसरा कोई खोल नहीं सकता, बहुत कठोर पारा रहता है। आज न जाने कैसे वो खुल गया, उसमें वो भीतर चली गई। आज सवेरे जबकि दरवाजा खोला गया, ठाकुर जी का मंगल आरती होगा होगी, उस समय में खोल करके देखा, अरे इसमें ये कहां से आ गई, एक लड़की महिला, तो ये चोरी की नियत से जिसमें दरवाजा बंद रहा था उस समय ये घुसी है, इसको पकड़ करके इसको मुकदमा किया गया। ये ठाकुर जी के हीरे के सब आभूषण होते हैं, इसकी चोरी करने की नियत। इसने कहा कि हमारे वहां पर आते हैं हमको सभी लोग जानते हैं, मैं तो गंगा में स्नान करते करते इधर आ गई, किसी ने नहीं माना, इसको लेकर के और जेल में दे दिया। राजा इसका विचार करेगा। रात जब हुई, राजा को स्वप्न हुआ जगन्नाथ जी का, ये साधारण मत समझो, हमारी ये परम भक्त है, इसकी इच्छा से मैंने अपने चरणों से गंगा प्रवाहित की और अपने पास इसको बुलाया है अपने चरणों में, इसको राजकीय सम्मान के साथ में इसको वहाँ पर इसके आश्रम में भेजो, और तुम और यहाँ के जितने बड़े बड़े पंडे हैं सब इसका जाकर के शिष्य हो, इनसे गुरु मंत्र लो और जो कहते हैं इसका आदेश पालन करो। उनकी नींद खुली, खुलते ही अपने सब लोगों से कहा, बड़े राजकीय सम्मान के साथ में इसमें से निकाल करके उसके आश्रम में पहुंचाया। दूसरे दिन सभी लोग उसके पास में पहुंचे दीक्षा मंत्र के लिए। कभी मैं किसी को दीक्षा मंत्र नहीं देती, हमारा ये काम नहीं, बहुत से लोग हैं साधु संत उनके पास में जाओ। किंतु राजा अड़ गया और सभी लोग ये ठाकुर जी का हिसाब, नहीं तो हमारा सर्वनाश कर देगा ठाकुर जी। अंत में बाध्य होकर के उसने इनको गोपाल जी का मंत्र दिया। ये परंपरा से वैदिक काल से ये चलता रहा है गोपाल मंत्र, उसमें गोपाल जी प्राण बल्लभ हमारे हैं। कृष्ण समस्त अवतारों के मूल अवतारी हैं, राम और जितने भी अवतार हैं वो सब कृष्ण से निकलते हैं, राम भी उनके अंश हैं। किंतु अंश ऐसा नहीं, खंड जैसा नहीं, जो काट दिया जाता ऐसा नहीं, ये रस के ऊपर में विचार करते ये बतलाते हैं, इसको हम पीछे कभी व्याख्या करेंगे। तो कृष्ण सब अवतारी हैं, वही सबके आराध्य हैं, शंकर जी, दुर्गा जी, जितने भी देवता देवी हैं सब इन्हीं की आराधना करते हैं। जो शंकर जी जो राम नाम दान करते हैं काशी में या कैलाश में मरते समय में, जैसे कि मुक्ति हो जाती है, उनके आराध्य देव हैं ये बलदेव जी राम, उन्हीं से ये राम है। राम और कृष्ण दो अलग अलग नहीं है, ये तो जब उस समय आते हैं तो कृष्ण के रूप में पीछे से आते हैं राम के रूप में, किंतु राम थोड़ा सा मर्यादा में बचे हुए हैं। भगवान होने पर भी, वही कृष्ण होने पर भी कैसी मर्यादा, सीता जी उनकी प्यारी पत्नी है। रावण ने उनको स्पर्श किया, उनका कोई दोष नहीं था, तभी राम ने उनको जेल भर के लिए निर्वासित कर दिया। क्यों किया, उनका कोई दोष था, एक धोबी के कहने से उसकी स्त्री चली गई शाम को और जरा रात से आई लौटी शाम से, अभी मैं राम नहीं, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता, मर्यादा है ये। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय बरु वचन न जाय, ये सब उनकी रीति है, ये है मर्यादा। कैसे रामचंद्र जी ने माता पिता की सेवा की, आदर्श है ऐसा। भरत को कैसे अपने भाई बनाया, दोनों राज्य को गेंद खेल रहे हैं, राम उनको दे रहे हैं वो उनको दे रहे हैं, किसी को जरूरत नहीं। महाभारत में उसी के लिए युद्ध हुआ, दोनों भाई लड़ पड़े, रामचंद्र जी में मर्यादा है, मर्यादा की रक्षा करने के लिए सीता जी का उन्होंने प्रत्याग कर दिया, नहीं करना चाहिए था, किसी ने नहीं कहा। उस समय में वशिष्ठ जी थे पुरोहित, लक्ष्मण जी थे, भरत थे, सभी तक किसी ने कहा ये मैया को क्यों तुम वनवास दे रहा है, इनका दोष क्या है, दोष था कुछ, कुछ भी दोष नहीं था, दोष था तो धोबी का दोष था, क्योंकि सीता जी को तो सभी लोग पवित्र बना कर चुके थे। दशरथ महाराज जी आए, बोले सीता जी पवित्र हैं, अग्निदेव निकले, सीता जी पवित्र हैं, पहले ही ये हो चुका था, जबकि लंका विजय के बाद ही में, और फिर इसकी क्या जरूरत, छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, मर्यादा के पालन करने। ये वहां पर उनकी भगवत्ता मर्यादा से बनी हुई है, कष्ट समस्त नहीं हो सकते, और कृष्ण के लिए क्या, वहां पर प्रेम सर्वस्व है, मर्यादा वहां पर बहुत ढीली ढाली। गोपियां देखिए, लक्ष्मी जी से भी अधिक श्रेष्ठ कृष्ण के समीप में जाती, कृष्ण सबको अंगीकार करते। कुब्जा जैसी एक स्त्री, आठ अंगों से टेढ़ी, और वो कृष्ण के पास में आई, उसको छोड़ दिया, उसको फिक्र करुणा की। उनका यही अवतार एक ऐसा है, जिस रूप में भगवान का भजन करो उसका हो सकता है। उन्होंने दूसरी सीता से फिर रामचंद्र जी ने शादी नहीं की, ये किया थे
नहीं की।
रामचंद्र जी ने कहा, महाराज मेरे गुरुदेव वशिष्ठ जी, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। यज्ञ तुम नहीं कर सकता, अयोग्य है। क्यों गुरु जी? इसलिए कि सीता को तुमने वनवास दिया, इसलिए सीता जी को ले आओ और तब फिर यज्ञ करो। नहीं, सीता जी को तुम्हें नहीं ला सकता, तो यज्ञ नहीं हो सकता। नहीं गुरु जी, हमको यज्ञ करना ही है। तो यज्ञ करना है तो फिर कोई उपाय बतलाइए। मैंने कहा जाओ कोई स्त्री से शादी कर लो। उनसे तो शादी करने के लिए विश्व की कोई भी महिला हो, जो कुंवारी लड़की है, राजकुमारी, तो कोई भी तैयार हो जाएगी। और कोई भी पिता अपनी लड़की को तुमको देने के लिए तैयार, शादी कर लो। अगर आप शादी दूसरे से नहीं करूंगा तो फिर कैसे बनेगी बात? तुम यज्ञ नहीं करो। नहीं गुरु जी, आपको ही उपाय निकालिए। तो मैंने कहा अच्छा, सीता जी की मूर्ति बना करके फिर उससे शादी करो, बनाओ और उसी को बाएं रख करके तुम यज्ञ करो। उन्होंने ऐसा ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा मर्यादा को पालन करने वाले। सीता जी को राम ने घर से बाहर कर दिया। सीता जी ने किसी दूसरे पुरुष को ध्यान कभी किया? ये सब मर्यादाएं हैं। मर्यादा होने पर भी एक इसमें बात है, रामचंद्र जी भगवान के स्वरूप, हनुमान जी राम की सेवा करते हैं, किंतु राम से ऐसे गले लग जाएंगे ये नहीं होगा। दूर से हाथ जोड़ करके उनके चरणों की सेवा करेंगे। लक्ष्मण जी भाई हैं, भाई माने सखा हैं, भरत जी सखा हैं, किंतु राम के पलंग पर बैठ जाएंगे, उनके दल बहिया दे लेंगे, जूठा खिलाएंगे, ये सब नहीं, ये मर्यादाएं हैं। कृष्ण में देखो, उनका श्रीराम सुबल मधुमंगल सब सखा है, क्या करेंगे? कृष्ण को घोड़ा बना करके उसके ऊपर में चढ़ जाएंगे, कहे दुल 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 चलो, आकर्षण को लेकर के चल रहे हैं। अपनी जूठी चीजें जो अत्यंत मधुर चीजें हैं खाते हुए कभी इतना सुंदर मधुर निकाल करके कृष्ण को खिला दे। भरत जी लक्ष्मण जी कोई खिलाएगा? मर्यादा से वहां पर बैठे हुए हैं, ये है मर्यादा। कृष्ण ऐसे हैं प्रेम के भूखे, सखा लोगों के जीव की बात क्या। सीता जी को तो रामचंद्र जी ने घर से निकाल दिया, निकालने पर भी सीता जी को छोड़ा नहीं, अपने राजभवन में कैसे रह रहे हैं? जैसे सीता जी वहां पर वन में हैं, चटाई बिछा दिया राजभवन में, खाते क्या है? वो थोड़ा सा फल मूल जीवन रक्षा के लिए, बिना तकिए का बिना गद्दी के सोते हैं, नींद नहीं आती, सीता जी सब समय याद आती है, जैसे सीता को राम कहता है, किंतु फिर भी सीता को नहीं ला पाते। और इधर में ब्रज में चलिए, सीता जी ने राधिका जी ने किसी कारण से मान थोड़ा सा कर लिया, विलंब से मिले मान कर लिया, गोपियों से कहा दरवाजे पर कुंज के खड़ी हो जाओ। और जब ये शाम आए, भीतर मत प्रवेश करने देना, काले नाम की कोई चीज को यहां मत आने देना, उसको बाहर रखो। सीता जी ऐसा कर सकती हैं? दरवाजे पर वो खड़ी हैं और वो कृष्ण आए, कृष्ण को घुसने दें, या कृष्ण उनके चरणों में गिर रहे हैं, मनौती कर रहे हैं, थोड़ा सा जाने दो, ये स्वामी जी की आदेश नहीं है। ये प्रेम प्रतिका इतना इन गोपियों में प्रेम है, ब्रजवासियों में प्रेम है, जिसकी वजह से पर ब्रह्म साक्षात आज झुक रहे हैं, मर्यादा इत्यादि सबको भंग कर देते हैं, उनकी चरणों की सेवा करते हैं, यहां तक ही कहते हैं मामा क्या त्यसी स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पौलवाम उदार। संस्कृत का जयदेव गोस्वामी ने सब बहुत ही सुंदर अलवेरा ये श्लोक है। स्मर गरल खंडनम, मैं तुम्हारा बिरह में तथा करके मर रहा हूं, विष क्या चीज है? विष से ये तुम्हारा बिरह जो है मैं इसको नहीं सकता, आप प्रसन्न हो जाइए, आप बड़ी उदार हैं, अपने चरणों को हमारे शीर का मस्तक का भूषण बना दीजिए, ऐसा राम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपकी इच्छा है जो मैं स्त्री के रूप में उनकी सेवा करूं। जनकपुर की राजकुमारियों ने उनको पाने के लिए
कहा जो सीता का इतना सौभाग्य जो इनको राम मिल गए, हम ऐसा कोई पुण्य किए होते जो राम के साथ में हमारी भी शादी हो। राम ने किसी को ग्रहण नहीं किया, कृष्ण किसी को कोई तपस्या करे आराधना करे कृष्ण से छोड़ देंगे? 16,000 गोपियां, 16 करोड़ गोपियां किसी को नहीं छोड़, जो जिस रूप में सेवा करें सखा के भाव से, वात्सल्य के रूप में, गोपियों के रूप में, सबको वो सेवा दान। इसलिए कृष्ण जो है एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान, इसलिए कृष्ण समस्त भगवत्ता की सृष्टि। राम छोटे नहीं है, राम भी कृष्ण ही है, किंतु जो अवतार में आए हैं मर्यादा से बढ़ रहे, कृष्ण राम मर्यादा से बढ़ रहे। जाकर आप भक्तों के चरणों में अपने सिर को दे दो। नंद बाबा की जूती को यहाँ सिर पर लेकर के बड़े आनंद करते हैं, आज बाबा की जूती में सिर पर लेते, यशोदा मैया उनको बांध देती है और किसी ने बांधा आज तक? विश्व ब्रह्मांड में उनको कोई नहीं बांध सकता, यशोदा मैया ने पार्सल जैसे उतना उनको मारने के लिए गई, अपने स्तन में 20 कालकूट भर दिया और उसको मैया की गति दे दी, बतलाओ तो। इसलिए ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो कृष्ण को छोड़ करके दूसरे का भजन करेगा? इसलिए आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, कृष्ण ही सर्वोत्तम भगवान की सीमा है, बड़े दयालु हैं, बड़े सुंदर हैं, अद्भुत हैं वो। थोड़ी सी कोई सेवा कर देता है तो उसे एकदम ऋणी बन जाते हैं। ऐसे भगवान को छोड़ करके और किसी का भजन न किया जाए और कोई सबको सम्मान दिया जाए एक चींटी को भी, किंतु हमारे आराध्य कौन है? ऐसे ही बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, राधा गोविंद जी की जय, राधा गोपीनाथ जी की जय, राधा मदन मोहन जी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे जय श्री राधा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गोविंद जय जय राधा हरि, गोविंद जय जय राधा हरि, गोविंद जय जय राधा हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि, गोविंद जय जय राधा रमन हरि, गोविंद जय जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, 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 राधा रमन हरि, गोविंद जय जय राधा रमन हरि, गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी मन बारी, राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी यो श्याम बनवारी।
वेदों में परिषद में भागवत में पुराण में एकादशी की क्यों व्यवस्था की गई, इसे क्या लाभ है क्या हानि है, इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें। अरे ये सुना नहीं कृष्ण जी एकादशी के संबंध में सरल सहज शब्दों में कुछ बोलिए, इसके बाद में बताऊं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय एकदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
पहले तो आज एकादशी है। आजकल हम लोग धार्मिक व्यक्ति भी इसके गुणों को नहीं जानने के कारण आजकल एकादशी नहीं करते, किंतु मनुष्य मात्र को एकादशी करनी चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण ये है, अभी समुद्र में हम जाएंगे समुद्र के किनारे तो देखेंगे एकादशी से पूर्णिमा या एकादशी से अमावस्या उसमें तरंगे अधिक आती हैं, उसमें लहरें आती हैं अधिक, ज्वार भाटा अधिक होता है। ज्वार क्यों होता है? तरंगे और दिनों में कम होगी। जहां एकादशी आई, एकादशी से पूर्णिमा एकादशी समस्या जरूर ऊंची उठेगी तरंगे। क्यों? सभी लोग स्वीकार करते हैं ये चंद्र के कारण होता है। जहां जहां रस है वहां पर ये खींचता है अपनी तरफ में, इसलिए समुद्र के पानी को अपने तरफ में खींचता है, इसलिए तरंगे आती हैं। हमारे शरीर में भी पानी है, ऐसा कोई मनुष्य प्राणी पौधा नहीं है जिसके अंदर में रस नहीं है। हम लोगों के शरीर में भी इस रस को चंद्र एकादशी से अमावस्या तक एकादशी से पुण्यात्मा को खींचता है, इसलिए अधिकांश रोगी लोगों का रोग बढ़ जाता है और इसी तिथियों में ही अधिक लोग मरते हैं। अस्पतालों में जाएंगे देखेंगे किसी का रोग, देखेंगे किसी को बात का रोग है, किसी को पित्त का रोग है, उस दिन जरूर एकादशी से वर्ण आरंभ हो जाएगा। हमारे ऋषियों ने इस पर विचार किया, विचार करके देखा यदि एकादशी को हम नेत्र जला रहे हैं अथवा अन्न न खाएं, रोटी इत्यादि न खाएं, चावल न खाएं, तो यह रस कम बनता है, इसलिए उसको चेक कर दिया जाए तो चंद्र का आकर्षण जो होता है रोगों का ये नहीं होगा। इसलिए हमारे शरीर के स्वास्थ्य में वो ठीक रहेगा, और जो लोग इस पर विचार नहीं करते उनको रोग अधिक होगा। पहले ये सूर्य ग्रहण के समय में हमारे यहाँ नियम है, सूर्य ग्रहण के समय में कोई चीज खाना पीना पेशाब करना टट्टी करना ये सब मना था, उनके तरफ में देखना मना था। आज करके ये सब पाश्चात्य शिक्षित लड़के ये सब मानते नहीं, सूर्य के तरफ में देखा तो आंखें गल गई, तो फिर विचार मानने लग गए कि किसी को कुछ हो गया तब वो मानने लगे। इसी तरह से हमारे यहाँ प्राचीन काल से सरल सहज भाषा में जो बातें कही गई हैं धर्म के बात में उनको जरूर पालन करना चाहिए हम लोगों को। इसलिए एकादशी के दिन में चंद्र रस को खींचता है इसलिए रोग बढ़ते हैं। हमने देखा है साधारण भी कोई कुछ है सिर में दर्द होने लग जाएगा, किसी को गठिया का रोग है वो बढ़ जाएगा, इसलिए इनको चेक करने के लिए शरीर को ठीक रखने के लिए भी एकादशी व्रत करना जरूरी है। दूसरी बात ये, यदि स्कूल कॉलेजों में और ऑफिसों में 7 दिन में 1.5 दिन की छुट्टी होती है तो क्यों नहीं हम अपने शरीर के यंत्रों को ठीक रखने के लिए हम लोग क्यों नहीं उपवास करें, वो लोग दूसरे दिन उत्साह से काम करेंगे, इसलिए जरूर ये करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन हम नहीं खाएंगे तो दुर्बल हो जाएंगे, यह बात गलत है। न खा करके देखो, यहाँ पर बहुत सी बच्चियों ने आशा किया है, लड़के लोग तो किए नहीं होंगे, कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं मैं जानता हूँ यहाँ, या महिलाएं भी होंगी जो उन्होंने आज दिन भर में पानी नहीं पिया और कल जाकर के सवेरे पानी पिएंगे, और देखिए तो कि किसके शरीर में तेज है, कल सवेरे देखेंगे ये किसके शरीर में तेज है। ये लोग दुबले हो जाएंगे किंतु उनका शरीर एकदम स्वस्थ और शरीर भी पेट भी ये सब कुछ ठीक रहेंगे। तीसरी बात, एक और लाभ है, अभी कुछ दिन पहले भारतवर्ष में अन्न की कमी हुई, विदेशों से कितने कितने लाखों लाखों टन गेहूं इत्यादि मंगाया गया। यदि हमारे भारतवर्ष में सारे लोग या विश्व के सारे लोग महीने में दो दिन उपवास करें, कितना अन्न बच जाएगा जिसे लाखों करोड़ों रुपए लोगों को दिया जा सकता है। अपने आप अन्न की समस्या हल हो जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे आचार्यों ने, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, इसे इसको जरूर करना चाहिए। ये तो हुआ जागतिक पहलू। हमने एक बार देखा, एक आदमी था, ये मथुरा की बात है, हमसे आकर के वो बोला, एक गाय पड़ी हुई है, चार दिन से वो ऐसी पड़ी हुई है, न मर रही है न जी रही है। मैंने उस महिला को कहा, एकाशी करती है तो करती हूँ, जाकर के उसे कान में कह दो, ये मैंने एक एकादशी का फल तुमको दे दिया, देखो जी इसका क्या फल होता है। वो गई और गैया माता, गो माता के कानों में उसने कहा, मैया ये तुम न तो जी रही है न मर रही है, मैंने एकादशी का एक का फल तुमको दिया। और साथ ही साथ में गाय ने बड़ी करुण नेत्र के से उसके तरफ में देखा और लंबी सी सांस लेती हुई होश में आ गई और उसी समय में प्राणों को छोड़ दिया। और उसने उनके कानों में कृष्ण कृष्ण ये शब्द कह दिए, आकर के मुझको फिर बतलाया, मैं बहुत खुश हुआ। कभी कभी देखते हैं, आप लोग परीक्षा करके देखेंगे, कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है मरने समय में जल्दी से प्राण नहीं निकलते, कोमा में बैठ जाते हैं, न बोल सकते न शरीर हिला सकते न कुछ कर सकते, बड़े दुख से वो मरते हैं, टट्टी निकल रही है, पेशाब निकल रहा है, होश नहीं है, चिल्लाते हैं किंतु मृत्यु नहीं होती। आप परीक्षा करके देखिए, शुद्ध रूप से एकादशी करके या जो एकादशी करता है उसको कहिए जैसे तुम संकल्प करके एकादशी का फल दे दो, देखो जैसे उसी दिन दूसरे दिन निश्चित रूप में या तो वो बच जाएगा और नहीं तो सुख से भगवान का नाम करता हुआ चला जाएगा। ये परीक्षा करके आप लोग देखेंगे। हमने सिडीगुड़ी एक स्थान है बंगाल में, वहां पर मैं गया था, हम लोग काफी लोग, एक व्यक्ति का प्राणी नहीं निकल रहा, वहां पर बहुत सी महिलाएं थी, मैंने कहा तुम लोग एकादशी करती हो या नहीं करती हो तो मैं अपने तरफ से एकादशी का फल इसको दान करता हूं। ये कहकर उसे कान में एकादशी का फल, मैंने कहा एक एकादशी का फल इसको मैं दे रहा, एकदम होश में आ गया और थोड़ी देर के बाद में ऐसे देखते देखते उसके आंखों से प्राण निकल गए। ये सब परीक्षा की बातें हैं। शास्त्रों में तो बहुत बातें कही हैं, आज लोग आजकल शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते। एकादशी है क्या चीज? ये भगवान का स्वरूप है, उन्होंने एकादशी के अंदर में सारी अपनी शक्ति कुछ दी है। इसलिए कि हम भगवान के अंश हैं, हम हैं जीवात्मा, स्त्री के शरीर में वही एक आत्मा है, पुरुष के शरीर में एक आत्मा है, बच्चे के एक एक पेड़ पौधे इत्यादि के अंदर में वही एक आत्मा है, भगवान का अंश है। ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातन, उसी की रामायण में भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जितनी जीवात्माएं हैं इस शरीर में वो भगवान के अंश हैं। हम भगवान को भूल गए और उनसे पृथक हुए और यहां माया ने हमें पकड़ लिया और हमारे स्वरूप को ढक दिया। कैसे? एक स्थूल शरीर से, एक सूक्ष्म शरीर से। मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर हैं और ये पंच भौतिक शरीर है, चित जल पावक गगन समीर, इसे उसको ढक दिया और ऐसी उसने प्रभाव डाला जो हम इस शरीर को, इस पिंजरे को ही हमने शरीर मानना आरंभ किया। ये पिंजरा है, एक ये कपड़ा है, हमने कपड़े को या पिंजरे को ही हमने मान लिया जो मैं हूं, किंतु हम लोग मैं नहीं हूं, ये शरीर नहीं। आत्मा अजर अमर है, उसका जन्म मरण नहीं होता, इसके अंदर में जो है, जब एक आत्मा एक शरीर से छोड़ करके या दूसरे शरीर में ऐसे प्रवेश करके इसको उठा करके फिर ऐसे करता है जैसे जोंक होता है, जोंक देखा है आप लोगों ने, पानी में जोंक होता होगा, गड्ढों में होगा, आसाम के जंगलों में होगा, बड़े लंबे होते हैं और पकड़ लेंगे तो सारा रस चूस लेंगे, रक्त चूस लेते हैं, तो वो एक जगह अपना मुख रख करके फिर ऐसे हट करके फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर इसको उठाते। ऐसे ही एक आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे में प्रवेश कर जाती है तब पहले वाली को छोड़ती है। आदमी मरता है जब, कब मरता है? एक शरीर को पहले ग्रहण करता है और साइकिल के चक्के की भांति ये शरीर तब तक चलता रहता, मालूम होता है जीवित है, जीवित नहीं, आत्मा तो निकल गई। पैडल चलाओ साइकिल में और पैडल छोड़ दो तभी 10, 20, 25, 30 हाथ चली जाएगी साइकिल। गाड़ी को ड्राइविंग कर रहे हैं मोटर कार को और उसका वो जो चलाने का ये था उसको बंद कर दो तभी अपने फोर्स से वो बहुत दूर तक चली जाएगी। रेलगाड़ी तो करीब करीब मीलों चली जाती है, एरोप्लेन मीलों चली जाएगी। उसी तरह से एक शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, इसको कहते हैं मरण। और जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है उसको कहते हैं जन्म। आत्मा किंतु नित्य है, उसका जन्म मरण नहीं होता, ये शरीर का जन्म और मरण होता है। इसलिए हमारी आत्मा का बनाने वाले ये जगत में कोई माता पिता और बंधु ये सब लोग नहीं है, नहीं इंजीनियर है ना कोई राष्ट्र के लोग हैं, वो तो प्रभु इसके मालिक हैं। उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से उसको दुख और सुख मिलता है और शरीर को भी छोड़ना और पकड़ना पड़ता है, इसी को कहते हैं प्रारब्ध कर्म। एक आदमी टाटा के घर में बेला के घर में जन्म ले लिया और एक आदमी भिखारी के घर में जन्म लिया, क्यों? एक आदमी अंधा जन्म हुआ, एक लड़की अंधी हुई और एक बड़ी खूबसूरत लड़की हुई, क्यों? एक आदमी हजार बार पढ़ने पर भी पास नहीं करता और दूसरा लड़का बिना पढ़े ये खेलता कूदता हुआ भी वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, क्यों? किसी को दिमाग कम है, किसी को बेसी है, क्यों? कम्युनिस्ट लोग कहते हैं एक आदमी धनी हो गया उसका रुपया लेकर के बांट लो सब में। अरे बांटना है तो सब बांटो, बिना परिश्रम का तुम खाना चाहता है, दूसरे जो परिश्रम से कमाएंगे उसको भी बांट लो, बांट लो। एक आदमी लंबा है एक आदमी छोटा है उसको भी बांट लो, कैसे करेगा काट करके? किसी की बुद्धि अधिक है किसी की कम है उसको कैसे बांटेगा, किसी का भाग्य कैसे बांट लेगा? ये सब चीजें असंभव है। बांटना है तो भगवान का भजन करो। इसमें भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने देखा कि जी मूर्ख होकर के माया में सुख खोजता है। ये जब तक भगवान को नहीं हम लोग पाएंगे तब तक सुख और शांति नहीं होगी, ये गारंटी रख लीजिए। कैसे? तुलसीदास जी ने गिनाया ये कैसे, वो कहते हैं समस्त शास्त्रों का यह सार है, सुप्त सिद्धांत यह उर्गारी, भजिए राम सब काज विसारी। सब कामों को छोड़ करके पहले भगवान का भजन करके खाओ पियो और सब काम करो, सब कामों को छोड़ो पहले, यही हमारा स्वरूपगत कृष्ण के प्रति भगवान के प्रति हमारा यह कर्तव्य है, नहीं तो सुखी शांति नहीं रह सकते। कहते हैं बिना भगवत भक्ति के कोई भी सुख नहीं पा सकता, कैसे? अंधकार बरु रवि ही न सावे, सूर्य चमकदार है प्रकाश उसमें है, उसको अंधकार कभी छिपा सकता है ढक सकता है? वो तो अंधकार को सूर्य दूर कर देता है, अंधकार उसको क्या छिपाएगा? कहते हैं तुझे ऐसा मान लो। दूसरी बात, आकाश में पुष्प खिल जाए ये भी मैं मान लूंगा, आकाश में कई फूल खिलता है, अरे तो जमीन हो तब तो खिले, आकाश तो शून्य है इसमें फूल कैसे रहेगा? हिमते प्रगट अनल बरु होई, ये हिम माने होता है बर्फ, बर्फ पर कहीं आग पैदा होती है, कभी मान लेता हूं जो हो जाएगा, बर्फ से आग निकलती है कभी नहीं होता, कभी मान। कमठ पीठ बरु जाम ही बारा, कछुए के खाल पर पीठ पर भले ही केश उगाए ये कभी नहीं होता। कछुआ देखा होगा आप लोगों ने, उसके पीठ पर बाल केश नहीं होते। कहते कि उसी तरह से भगवान के विपरीत रह करके कभी सुख होगा ये कभी संभव नहीं है, भगवान को भूल करके कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। अंत में कहते हैं बारी मथे बरु हो यृत शिकता ते बरुते बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल माने जिसको इधर उधर नहीं किया जा, जिसने जन्म लिया है मरेगा ही, और जो मरा है वो जन्म लेगा ही, ये सिद्धांत को नहीं हटाया जा सकता। सूर्य उदित होगा तो प्रकाश आएगा ही, रात खत्म हो जाएगी, सूर्य आ जाएगा, रात रह सकती है? नहीं। एक बात और, कोई व्यक्ति चाहे जो हंसे भी गाल भी फुलाए एक साथ, होगा कि नहीं? जरा हंसो और गाल फुलाओ तो एक साथ में नहीं होगा। हंसने में मुख से वायु निकल आएगी और गाल फुलाना नहीं होगा, दोनों काम नहीं होगा। एक तलवार में दो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी, एक ही के लिए बनाया गया है ना, दो कैसे रह जाएगी? सूर्य और रात एक साथ में नहीं रह सकते। उसी प्रकार से संसार का भोग जिसमें हम भोग रहे हैं और भगवान की भक्ति एक साथ एक म्यान में नहीं ठहरेगी। यदि कोई सुख चाहता है तो बारी मथे बरु हो यग्रित, पानी के गिलोने से मथने से भले ही घी निकल आए, अभी निकलेगा? अरे घी निकलना है तो कैसे? दूध को जमाओ, दही बनाओ, और दही को क्या करो? उसको मंथन करो, उसमें से निकलेगा मक्खन। मक्खन को आग पर रखो, और आग पर रखने से क्या होगा? ऐसे ऐसे नहीं, दूध में घी ऐसे नहीं दिखता, किंतु दूध के कण कण में घी है ना? तो जिसमें दूध की पोटेंसी है उसमें से घी निकलेगा, जिसमें घी है ही नहीं है, बारी पानी को मथने से एक लाख वर्ष एक व्यक्ति ने मथना आरंभ किया, एक लाख वर्ष घी निकला? नहीं निकलेगा, अरे उसमें तो घी है ही नहीं। और सिकता ते बरुते, सिकता कहते हैं बालू को, रेती को, समुद्र की बाली उठा करके बालू को एक क्विंटल ले आओ और घानी में दे दो और पीसो, तेल निकलेगा? चाहे जन्म जन्मांतर तक पीसते रहो नहीं आएगा। और सरसों लेकर के थोड़ा सा उसमें डाल करके और पीसते देखो उसमें से तेल आ जाएगा। क्यों? सरसों में तेल की पोटेंसी है, तिल में तेल की पोटेंसी है, इसलिए इसमें से आएगा। तीसी जानते हैं? तीसी, तीसी भी एक छोटी सी अलसी जिसको कहते हैं, उसमें तेल होता है, तो इसमें से तेल निकल सकता है। कहीं बालू में से या मिट्टी में से तेल निकलेगा? तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भी मैंने मान लिया, तर्क के लिए मैंने मान लिया, किंतु हरि भजन के बिना कभी भी भाव सागर से हम पार कर नहीं सकते। कभी कोई भी जीव आज तक न सुखी हुआ न होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए इन चीजों को समझ करके भगवान ने देखा कि अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए, जीव पर कृपा करने के लिए मैं एकादशी हो जाऊंगा, इसलिए एकादशी का व्रत उन्होंने धारण किया और कहा जो लोग एकादशी को निर्जला रहेंगे, कारणवशतः रुग्ण होने पर, दुर्बल होने पर, असमर्थ होने पर, यदि एकादशी को फल आम केला इत्यादि लाखों फल हैं, नहीं है मट्ठा है, दही है, दूध है, यहां तक कि शिकंजी इत्यादि है, नहीं कुछ है, आलू उबाल लिए सेंधा नमक के साथ में उसको ले लिया, एक आदमी नहीं खाने से मर जाएगा? कभी कभी तो हमने देखा है परिवार में पति और पत्नी में किसी बात में अनबन हो गई और पत्नी ने एक दिन खाया नहीं तो मर गई, रहता ऐसा होता है, या बच्चे नहीं गुस्से में आकर के, या पति नहीं गुस्से में आकर के नहीं खाया तो मर जाता है। अरे गांधी जी तो 40 दिन तक अनशन किया तो मर गए। इसलिए ऐसा नहीं, एक दिन में आदमी नहीं मरता। तो भगवान ने कहा यदि कोई एकादशी करेगा, नहीं खाएगा मेरे लिए, तो मैं उस व्यक्ति को भव सागर से पार कर दूंगा। कुछ लोग एकादशी करने लगे। एकादशी करने से जगत के जितने लोग हैं सब एकदम तरने लगे, कोई नरक में नहीं गया, नरक खाली हो गया। चित्रगुप्त महाराज जम के पास में गए, महाराज अब हमारा तो कोई काम ऑफिस में नहीं है, कोई आदमी नरक में आता ही नहीं है, इसलिए आप ये खाता ले लीजिए जिसमें कि नरक आते हैं और उनको भोग भोगना है, अब तक कोई नरक में नहीं आता, नरक पूरा खाली हो गया एकादशी के करने से, तो मेरी क्या जरूरत रही? उन्होंने कहा ये ठहरो,
मैं भगवान से निवेदन करता हूँ, इसके बाद में मैं व्यवस्था करूंगा। आप लोग ऐसा मत समझेंगे कि कोई लोक नहीं है और नरक स्वर्ग नहीं, ऐसा मत समझेंगे। और लगातार पाप करते जाएंगे ऐसा वो दंड देगा ना, सांप की तरह में पीस देगा। इसलिए स्वर्ग नरक नहीं है ऐसी मत कोई कल्पना करेंगे। हमारे शास्त्रकारों ने जो कहा ये पूरी रूप से ठीक है। आप लोगों ने धुंधुकारी का शायद बात सुना होगा, का जो भूत नहीं है, भूत नहीं है। अभी देखिए कितनी जगह में भूत पड़े हुए हैं ना, जो अपवित्र जाते हैं उनकी आत्मा निकल करके वो भूत माने वायु में मिल करके तरह तरह से अनिष्ट करती है। जो अपवित्र रहते हैं उनको पकड़ती है, पवित्र रहने वाले को नहीं पकड़ती है भूत। ऐसे ही नहीं, हम तो मथुरा में इधर उधर में बम्बई में भी सुने हैं भूतों का घर है, यह ऐसा है, बस ये बात झूठी नहीं है। इसलिए स्वर्ग और नरक ये सब, स्वर्ग नरक यहां पर भी है, अपने करने का यहीं पर फल भोग लेते हैं। जो झूठे बोलते हैं, चोरी करते हैं, घर में आग लगा देते हैं, तरह तरह से दूसरों की स्त्रियों के प्रति बुरी नजर रखते हैं, माँ बेटी बहन नहीं देखते, उनको इसी जगत में ही नरक मिलता है। और इससे भी अधिक यदि किया तो नरक नाम का एक जगह है, वहां पर फलने फल भोगने पड़ता है। गीता असत्य नहीं है, उसमें भी बतला ते तंग भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीने पुने मत्तलोकम विशंति एवं तई धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम काम आलभंते। इस जगत में जो पुण्य का काम करते हैं साधारण, इसी जगत में भोग लेते हैं। और जो इससे भी अधिक करते हैं जैसे शिवी एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने को काट काट करके दे दिया, दधी की ऋषि देवताओं के लिए क्या किया, अपने गाय गाय के से अपने अंगों को चटा दिया, दही और बूरा लगा दिया शरीर में और जीते ही उसको गाय चाट गई, उसी से वज्र बना और उसे जब बित्ता सुर का बंद हुआ। ऐसे जो लोग हैं ये स्वर्ग में जाते हैं और अपने फलों को भोग करके फिर वहां से लौट आते हैं। इसलिए स्वर्ग और नरक झूठा नहीं है। पहले लोगों को जैसे आज चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, एक साथ में 10 20 50 60 आदमी 100 2000 आदमी हैं, उनको एक ही साथ में बंद कर देते हैं। अभी अमेरिका ने बंद छोड़ा ना जापान पर एक बार, हिरोशिमा या हिरोशिमा, और कितने लाखों करोड़ लोग मरे, उनको भय नहीं है किसी को मारने। आजकल के राजनीतिज्ञ लोग वो तो राजनेता नहीं है, लीडर नहीं है जो 10 20 लाखों आदमियों का खून नहीं कर दिया, इसी तरह से वो होते हैं किंतु जानते नहीं है इसका परिणाम क्या होगा। बहुत भयंकर परिणाम होता है, रुपये देकर के कोर्ट में बच जाए हैं किंतु भगवान के नजरों से नहीं बच सकते। पहले के लोग डरते थे भगवान से, आजकल भगवान नाम का कोई चीज कहते जो नहीं है इसलिए चोरी करते हैं, चमारी करते हैं, झूठ बोलते हैं। आजकल अंकुश ही नहीं है समाज पर, कोई डरता नहीं है गवर्नमेंट से। इंदिरा गांधी को देखो ना मार डाला, राजीव गांधी राष्ट्र के प्रधानमंत्री थे, कैसे उनको मार डाला। और हम लोगों की आप लोगों की तो बातें क्या है, कितने लोग मरते हैं, कितने क्या होता है, कौन देखता है। इसमें भगवान यदि माना जाए भगवान है तो सभी लोग उनसे डरेंगे, फिर ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले कोर्ट में केस नहीं होता था, कोई केस करने नहीं जाता, चुपचाप ऐसे ही कोर्ट बैठी रहती थी। अब एक कथा सुनाऊं, आज से 5-7 हजार वर्ष बाद की पहले की बात है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। जब युग परिवर्तन हो रहा था, ये द्वापर युग से जबकि आने था कलयुग, एक दिन रह गया था, दूसरे दिन कलि को आना था। तो द्वापर के उस दिन में एक व्यक्ति ने अपनी जमीन बेच दी दूसरों के यहां, बेचने पर वो हल चलाने गया खेत में, तो उसने देखा हल का अगला भाग एक घड़े में लग गया नीचे, और जब उस घड़े को निकाला तो देखा ये सोने का घड़ा है, उसमें अस्थी भरी हुई है। उस अस्थी को घड़े को ले लिया, लेकर के जो बेचने वाला खेत था उसके पास में गया,
अजय आपने हमको खेत बेचा, सरफी तो बेचा नहीं, हमको असरफी मिली या सरफी ले लीजिए आप। उसने कहा मैं तो सबके साथ में ही जमीन को बेचा, अब जमीन पर हमारा अधिकार नहीं है, मैं असरफी नहीं लेता। असरफी लेने के लिए नहीं? कितना झगड़ा कितना क्या होता है, खून हो जाता, किंतु वो दोनों कह रहे जी हम नहीं लेंगे तो हम नहीं लेंगे। उसने कहा मैंने खेत बेच दिया। उसने कहा था कि खेत तो बेच दिया, असरफी तो नहीं, असरफी ये तुम्हारी है। वो नहीं ले रहा। राजा के पास में गए, उसमें परीक्षित है महाराज राजा, उनके पास में गए, बोले जैसे ये इन्होंने खेत बेचा था, असरफी नहीं दिया, बेचा था, इसलिए असरफी इनकी है, इनको कह दीजिए ये ले ले। और जिसने खेत बेचा था उसने कहा कि नहीं, मैंने तो सब कुछ बेच दिया था, इसका मेरे ऊपर में अधिकार नहीं है, इसलिए सब कुछ इनका है। राजा बड़ी मुश्किल में पड़े, अब क्या फैसला दें। सोच विचार करके बोले कल मैं इसका फैसला दूंगा, आज मैं सोच रहा हूं। दूसरा दिन हुआ, कली आ गया, कलियुग। वो कहता है भाई ये जमीन जब मेरी है तो ये रुपया भी मेरा। और वो सोचता है कि जब भाई ये रुपया मेरा है सरफी, वो कहता है रुपया हमारा दे दो। वो कहता है हम नहीं देंगे, ये तो मेरा है, हमको खेत में मिला। और फिर राजा के पास में गए, भाई कैसे आए, तुम्हारा वो मुकदमा जो तुमने दायर किया था वो उसका निर्णय हो गया। नहीं महाराज जी, ये रुपया मेरा है। वो कहता है मेरा है। उन्होंने कहा अच्छे, अभी कलयुग का प्रारंभ था, उन्होंने कहा झगड़ा मत करो, एक बात करो, तुम्हें से किसी को एक लड़की और किसी को एक लड़का है तो हाँ। एक ने बोला जी हमको लड़का है, मेरा लड़का 21 वर्ष का हो गया। और एक बोला जो बेचने वाला था, उन्होंने मेरी लड़की एक है वो भी 16-17 वर्ष की हो गई है, विवाह करेगा परस्पर, अतः हाँ कर सकते हैं। कहा जी अच्छा देखो, ये लड़की वाला उसे विवाह करेगा उस लड़के वाले लड़के से, और उपहार के स्वरूप में ये उसको दे देगा। जिसने खेत खरीदा है उसके पास में असरफी है, उसके पास में लड़की है, और जो बेचा था वो लड़के के वाले का, उसने कहा जैसे खेत जिसके अभी पास में जिसको असरफी मिली वो जलतु के रूप में उपहार के रूप में उस लड़के वाले को वर के लिए और कन्या के लिए इसको दे देगा। अंत में ऐसा। और आजकल देखिए तो एक पैसे के लिए, जमीन की एक हराई के लिए कितना खून और कितना क्या होता है। आज भाई और बहन एक साथ नहीं रह सकते, पति का अकाउंट अलग, पत्नी का अकाउंट अलग, लड़की के अकाउंट और बेटे का अकाउंट अलग, किसी पर किसी को विश्वास नहीं है। बस एक ही कलियुग में गुण है और बाकी सब दोष हैं। क्या गुण है, जैसे तैसे भी यदि हरि नाम किया जाए तो उसे उद्धार पाकर के भगवान की भक्ति पाकर के बैकुंठ चला जाता है। इसलिए हम लोगों को हजार दोष है कलियुग में, कले दोष निधे राजनस्ति हे को महान गुना, एक ही गुण है हम भगवान से किसी प्रकार से विचित हो गए, भगवान को छोड़कर इस जगत में थोड़ा सा सुख मिलने पर समझते बड़े सुखी हैं। एक लड़की एमए में पढ़ रही है, सोचती है अब एमए पास करने के बाद में बड़े ऊंचे घर में मेरी शादी होगी और हम लोग सोने का संसार बनाएंगे, टीवी और क्या क्या छत्ता, आजकल छत्ते बनाते हैं ऊपर में, क्या क्या ये सब चीजें रखेंगे, और तरह तरह के सपनों की कल्पना करती हैं। और लड़का भी ऐसा ही कल्पना करता है, लड़का ने पास किया कोई नौकरी ही नहीं मिली, उत्तंग बेचारा हो गया, अब फिल्म गांजा भांग हीरोइन खाने लगा और हीरो बन गया। और लड़की ने देखा जैसे मैं पास हो गई और अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा, उसका सपना क्यों होगा, यह गंजड़ी फंगड़ी के साथ में उसकी शादी होगी और क्या होगा। इसलिए आप लोग सोच समझ करके, ये कलयुग है, जिस रूप में हो अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, यह बात तो ठीक है, खाने पीने के लिए जीवन निर्वाह के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, किंतु साथ साथ में भगवान का भजन करो, इससे लाभ क्या होगा। एक उदाहरण देकर के छोटा सा उदाहरण समझा रहा हूं। दो बाल्टियां हैं, दोनों में पानी भरे हैं साफ सुथरा, बाल्टी समझते हैं ना, उसमें पानी रखा है साफ सुथरा है। मैंने कहा कि भाई ये थोड़ा सा हवाई रंग है लाल, थोड़ा सा एक बाल्टी में छोड़ दो। उसने छोड़ दिया, उसको मिला दिया, लाल बन गया। मैंने कहा ये पानी लाओ, तो दोनों बाल्टी लाएंगे ना, कौन सा बाल्टी लाएंगे, जिसमें रंग नहीं भरा है वो ले आएंगे। अकान या रंग वाली बाल्टी ले आना, तो इतनी सी उसमें रंग मिला देने से लाल हो जाने पर वो लाल रंग बन गया, किंतु पानी वही है एक ही समान। अच्छा एक और बाल्टी लाइए, उसमें पानी भर दीजिए, थोड़ी सी चीनी दे दीजिए और दो नींबू उसमें निचोड़ दीजिए। अब वो पानी रहेगा ना, शिकंजी बन जाएगा, अब पानी नाम नहीं रहेगा, अब वो शिकंजी बन जाएगी, शरबत बन जाएगा। उसी तरह से ये जितने भी संसार के शुभ कर्म हैं, इनमें थोड़ा सा भगवत भक्ति का भाव लगाओ। प्रभो मैं आपको प्रसन्न होने के लिए ये कर रहा हूं, बस इतना कर दीजिए, वो आपका कर्म नहीं रह करके ये भक्ति हो गया। इस करने में क्या लगता है, रसोई बनाओ उसमें तुलसी का पत्ता दे करके, हे प्रभो ये आपके लिए अर्पित है। ये पहले की रीति थी। जब पहले कर्म, जब हम घर से निकलते थे तो भगवान को प्रणाम करके निकलते थे। आजकल तो ऐसी स्थिति है, विशेष करके दिल्ली में, कलकत्ते में, न्यूयॉर्क में, कोपेनहेगन में, लंदन में और सब जगहों में इतनी भीड़ होती है, इतनी रश होती है, अब ये कारें चलती हैं, ट्रक चलते हैं, लौट करके घर आना बड़ा भारी मुश्किल है। घर से निकल गए, लौटेंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं। अभी मैं मथुरा से दिल्ली आ रहा था, देखा जब 10-12 ट्रक उल्टे हैं और उस पर चूर हो गए, कितने आदमी मर गए। विवाह करने के लिए जा रहे थे, विवाह का पूरा परिवार और एक भी नहीं बचा। अरे भाई भगवान को प्रणाम करके जाओ, तुम्हारे विघ्न दूर हो जाएंगे, ये भक्ति हो जाएगी। तुम इतना नहीं समझता, सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो, तब मेरी रक्षा कर, मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। ये कहने में क्या लगता है, कुछ नहीं, हरे राम करो, राम राम कर दो, कृष्ण कृष्ण, इसमें क्या लगता है, पैसा लगता है। एक आदमी मर रहा है, अभी तुरंत मरने वाला है, उसके लिए क्या करोगे, भोजन दोगे न, क्या करोगे, बस राम नाम के अतिरिक्त और कोई चीज है। तुलसी का पत्ता उसके मुख में गंगा जल दे करके और कृष्ण नाम सुना दो, राम नाम से बस वो कर जाएगा। आजकल डॉक्टर में हम लोग जाते हैं, भर्ती कर दिया यहाँ का बड़े बड़े अस्पतालों में, और चीर फाड़ होने लगी, तुलसी भी नहीं दे सकते, गंगा जी जल नहीं दे सकते, राम नाम सुना कभी अभी कोई नहीं मिल सकता, इतने में उनके प्राण निकल गए। पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। अच्छी तरह से आदमी अपने स्वाभाविक रूपी में मरता था, कष्ट नहीं होता था। आजकल ये जघन्य, ये सब चिकित्साएं भी हैं, और बिना चिकित्सा के मन मानता नहीं, इसलिए जो कुछ भी करो सवेरे भगवान को प्रणाम करके चलो, लौट करके आओ तो भगवान को प्रणाम करो। इसमें क्या लगता है, एक आदमी बीमार है, हरे कृष्ण कर रहा है, निर्धन है, एक स्त्री है, सभी लोग कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई सभी भगवान का नाम ले सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम कलयुग में लेना चाहिए, एकादशी का भी व्रत जरूर करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, मैं आपका हूं, एक पैसा का खर्च इसमें नहीं, किंतु ये पहुंच जाती है ये प्रार्थना भगवान के यहां। एक समय की बात है, इंग्लैंड की बात, वर्षा नहीं हो रही, बहुत दिनों तक वर्षा नहीं, अकाल पड़ गया, गर्मी के मारे लोग संभरने लगे। वहां के चर्च वालों ने व्यवस्था की, आज सब लोग जितने हैं लंदन के या इंग्लैंड के एकत्रित होकर के चर्च घर में आए और वहीं पर प्रार्थना भगवान से करेंगे, गॉड से, कि वर्षा हो जाए। बहुत से लोग आ रहे हैं, एक छोटा सा बालक 8-9 वर्ष का वो जा रहा था, उसने घर से एक छतरी ले ली, छतरी लेकर के जा रहा है। लोगों ने पूछा कि कहां जा रहा है, तो चर्च में जा रहे हैं, किस लिए, प्रार्थना करने के लिए भगवान से जो वर्षा हो। तो कोई छाता लेकर के नहीं जा रहा है और तुम छतरी लेकर के जा रहा है, हमको विश्वास है कि ये प्रार्थना करने पर जरूर वर्षा होगी, देखो कैसा विश्वास। और इतने लोग गए, किसी को इतना विश्वास नहीं, किंतु एक लड़के के विश्वास से जब गया और इसने प्रार्थना की पूर्ण विश्वास के साथ में, सचमुच में प्रार्थना करने के साथ साथ में मेघ उमड़ पड़े और जोरों से वृष्टि होने लगी। ये विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर में सब जगह प्रभु है, का नहीं है, घटघट वासनी है, हम नहीं समझते। किंतु सचमुच में प्रार्थना करने से, हृदय से प्रार्थना करने से वो प्रार्थना सुन लेते हैं। इसलिए भगवान के प्रति नास्तिक नहीं होना चाहिए। आजकल कर विशेष करके लड़के सब जो आधुनिक शिक्षा पाते हैं, भगवान और धर्म कर्म कुछ नहीं मानते। तो बेटा तुम लोग ऐसा मत करना, तुम लोग पहाड़ों के रहने वाले हो, गंगा जमुना के किनारे के रहने वाले, भगवान के प्रति कभी भी नास्तिक बुद्धि नहीं आने पाए। और आप लोगों का भी, आप लोग अपनी बच्चियों को बहुओं को ये शिक्षा देंगे, तुलसी का आदर करें, भगवान का नाम करें, और अपने घर में गैया का आदर करें। इस तरह से रह करके आप धार्मिक जीवन बनाते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। और हम लोग रहेंगे आज तो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। भागवत की कथाएं एक एक करके हम आप लोगों को सुनाएंगे, उसमें बहुत सी शिक्षा है, बहुत से विज्ञान है, उससे बहुत सी शिक्षाएं मिलेंगी, हमारा जीवन बहुत उन्नत हो सकता है। इसलिए आज यहीं पर समाप्त कर गौ प्रमानंदे
हरे
वहां पर भेद। इसलिए ये भेद जो जाति है तोड़ करके उदारता पूर्वक भगवान के भजन में रखें, ये प्रभुता से हमको अभिभागत हुआ। भागवत कराने का फल क्या है, अब करने का क्या फल है, भागवत में इसके महात्म करना। जैसे एकादशी लोग करते हैं, एकादशी का महात्म क्या है, वो कौन पूछता है, जब कौन को पूछता है एकादशी का महात्म क्या है, इसे एकादशी का
फल के लिए करते
हैं,
जो फल के लिए एकादशी करते हैं।
आज क्या सब्जी बनी है देखो तो, ये कौन पूछेगा,
पेट
भरा हुआ
नहीं, भूख नहीं, पेट भरा हुआ,
पेट भरा गया का प्रश्न नहीं, रोगी है, भूख है, खा नहीं सकता। तो जिसको भूख नहीं है पूछेगा क्या सब्जी बनी, और जिसको खुद जोर से भूख लगी है उसको पूछने की जरूरत, जो कुछ आया सर पर चला गया, जो कुछ आया बड़े प्रेम के साथ में आंख बंद करके बड़े तृप्ति के साथ, चाहे रोटी और साग हो, रोटी है दाल हो, या सूखी रोटी हो नमक के साथ भी खा लेगा। काशी का महात्म क्या है, किसको, जिसको भगवत भक्ति का भूख नहीं है, महात्म क्या इसका, एक आप कृष्ण के चरण में प्रेम। वैसे भागवत सुनने का फल आजकल लोग समझते हैं स्थूल विचार कर, गुरु के संबंध में स्थूल विचार करते हैं, गुरु जी ऐसा कीजिए हमको संतान नहीं दो, एक संतान तो मेरे लिए जरूरी है, और मेरा कारदा ठीक नहीं चल रहा, जरा मेरा कारदा ठीक चल रहा, और मन संसार में बहुत आसक्त है, अपन तो चंचल है, सब समय तो की छाया लगी रहे अशांत है, ये जरा ठीक हो जाए, भागवत पढ़ने से ये भी होगा, क्योंकि ये उद्देश्य नहीं है। इसलिए गुरु मत करो, गुरु का तात्पर्य तो गुरु के तत्व को समझ नहीं सके, भगवान के चरणों में प्रीति हो इस चीज को देने के लिए, इस चीज को अच्छी तरह से समझा दी, ये सब चीजें नश्वर है, मिलने में भी सुख शांति नहीं होगी। इसलिए भागवत उस चीज को क्या चीज को देने के लिए आए, जिसके सुनने से तत्क्षणात् भक्ति हो जाती, तो क्या हृदय अवरुद्ध थे,
सत्य हृदय अवरुद्ध थे,
सुश्री सुश्री तत्क्षणात्। जैसा वही स्कूल में नारायण कृष्ण ये भागवत का फल, भागवत को श्रवण करने से यदि मन से सुने तो सो मोह ये आनुषंगिक रूप में गौ के रूप में दूर हो जाता अपने आप, जैसे सूर्य आने के साथ अपने प्रकाश भी हो जाता है, और रात अंधेरी रहे तो डर लगता है, पथ नहीं सूझता, भूत आ गया ना, बाघ आ गया ना, सांप आ गया रास्ते में, ना गड्ढा है ना क्या है, सब समय चलने में सूर्य के उदित होने से सभी कुछ ठीक अपने आप हो जाता है, प्रकाश है इत्यादि सब कुछ, उसी प्रकार से सो है मोह ये सब, और मुख्य रूप में क्या होता है,
कृष्ण तत्वनाथ उसके हृदय में और कैसे कृष्ण अपनी समस्त शक्ति और परिक्रम के सहित उसके हृदय में और उसके सेवा में करने में जाता है। ये भगवत भक्ति का ये सुमत ठाकुर इस उद्देश्य से ठाकुर सुना जाए, ये नहीं जैसे हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आई थी कुछ ऐसा हुआ था ये सब दूर हो जाए और बहुत सुख हो जाए कल्याण जागतिक हो जाए। कल्याण जागतिक नहीं परमार्थिक, ये जगत में कल्याण नहीं है। सुख वो तुम चाहते हो जैसे जिस चीज से दुख करना वो उसे और बढ़ता जाए, इसलिए भगवान के चरणों में ऐसी प्रति हो जिसको परीक्षित महाराज जी को हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया और सुख गोस्वामी ने ऋषियों को सुनाया, वैष्णव पायन ने जन्मेजी जी को सुनाया, जन्मेजी जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद ने किन को सुनाया, व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने सुनाया। इस तरह से विचार करके सुनना चाहे उस द्वाइन में सुने चित्त को एकाग्र, कोई एक भक्ति कर रहा है भगवान का भक्ति। जागतिक युद्ध उसमें होंगे कि नहीं हो सकता, छल छल किसी से बैमानी रुपये के लिए किसी संपत्ति के लिए किसी ईर्षा देश के लिए किसी स्वार्थ के लिए ये सब रहेंगे कि नहीं, अपने आप ये तो रहने तो चलिए सोच नहीं जाएगा। जब एक ग्रास हम खाएंगे उसी रूप में खाने के साथ साथ में जो और खाने की क्रिया थी धीरे धीरे कम होने लगी और शरीर पुष्ट हो रहा है ये साथ ही साथ मालूम हुआ। अब नहीं खाएंगे, 10 ग्रास खाइए, 10 ग्रास में पेट जब भर जाएगा अब वहां पर खड़ी रही चीज नहीं खाएंगे। इसलिए विरक्ति पहलो
शांति रहे,
परेशान अनुभव भक्ति भगवान के चरणों की सेवा होगी, भागवत का श्रवण होगा, तीन चीजें एक साथ में होगी, भक्ति परेशान अनुभव और विरक्ति। भक्ति में जितना ही आप श्रवण कीर्तन करेंगे भगवान की कथाओं को उतने रूप में आपका पेट भरता जाएगा संसार की तरफ से, उसके स्पीड है दूर होगी। कितने सुख रूप में कीर्तन होगा भगवान का नाम होगा, श्रवण कीर्तन होगा और जो भगवान के प्रति जो विचार जितने आप करते जाएंगे उतने ही परिणाम में पुष्टि मैंने भगवत अनुभूति अभिव्यक्ति संसार से ऐसा जब नहीं हो रहा है शोक मोह लगा हुआ है तो इसका मतलब जब तुम्हारा सुनना या कीर्तन या भक्ति एक साथ। इसलिए ठाकुर सुनना मैंने ये तीन ही चीजों का साथ साथ में वो जो सुन रहे हैं भक्ति हो रही है, सुनना ही भक्ति है ठाकुर। जब उसका मनन करते हैं ना अच्छी तरह से काम मनन करते हैं कपिल देव होती संवाद और वो पुरंदर उपाख्यान और उससे भी और अधिक हवा कभी एक है उसको जनखल जी का विचार ये जब सुनते हैं अपने आप इन विषयों पर तीन चीजें एक साथ भगवत अनुभूति नहीं होगी। एक आदमी लगातार खाता हुआ चला जा रहा है और पेट नहीं भर रहा और बीमार का बीमार भी है तो क्या मतलब हुआ, जैसा जिस रूप में खाना चाहिए ये नहीं खा रहा, ये खाई ना रहे खा रहा है खाता ही चला जा रहा मतलब कहीं गड़बड़ी है। इसलिए यदि भगवत को भक्ति हो रही है भागवत हम सुन रहे हैं और भागवत के जो विचार हैं वो यदि हृदय में नहीं आ रहे ऐसा मतलब है कुछ नहीं बेकार का उसका चित्त दूसरी जगह है विषयों में फंसा हुआ। इसलिए जब तक पुष्प का से नहीं सुनेंगे करने के लिए क्रिया में रूपांतर करने के तब तक इससे विशेष लाभ नहीं होगा, वही भोग और मोक्ष में करके बस। इसलिए भागवत को पुष्प में विशेष करके भागवत सुनने से भजन करने की स्पृहा और क्रमशः बढ़ती जाएगी। जैसे परीक्षित महाराज नौवे स्कंद कथा के बाद में वो ज्यादा चुप हो गए। तो प्रभु चुप मत कहिए, अतः कुछ काम दूध पेशाब करना, खाना भोजन करना, पानी पीना, थोड़ा सा पी लो। नहीं, हम अमृत पी रहे हैं, हमको कुछ नहीं कर रहा, पानी भी पीने की फुर्सत नहीं, इसीलिए तो हमारी दुर्गति हुई। निरंतर तरीके था, इस तरह से हम लोगों को समझना चाहिए अच्छी तरह से, भीतर में प्रवेश करने की चाहिए। इसलिए हम लोगों को चाहे त्यागी है, चाहे गृहस्थ है, चाहे जैसे उपलब्धि पर संसार की असारता यह हुआ प्रयाग, इसके प्रति प्रयाग होता जाएगा, इसके प्रति आसक्ति और भक्ति कही तो वो भागवत सुनना और भजन करना है। गुरु चाहते हैं किस चीज, उसके अंदर में परमार्थिक ये भाव उसका उपलब्धि कर। भारत में क्या चीजें हैं, मैं कल बतलाया था सब सभी दृष्टि से बेहंगम दृष्टि से प्रधान महाराज जी का चरित्र, भरत जी का चरित्र, प्रारंभ में ही नारद जी का चरित्र। यदि भगवत भक्ति की इच्छा है तो सुख मुझे वैष्णव है, सचमुच में भगवान की सेवा करने वाले हैं, उनकी चरणों की धूली, उनके चरणों का पवन जल और उच्छी स्तुति हरि कथा और प्रसाद, ये सेवन करना ही भक्ति का बल है। क्यों बल है, समझने में देर लगेगा। कोई एक व्यक्ति कह रहे थे ये साधु पुरुषों के चरण को छूना चाहिए, कोई लोग यहां पर छूते हैं और कोई लोग छूते हैं पैर, नख के पास में छूने से उनमें से एक चिंगारी निकलती है दूसरों के अंदर में से जाती है। अपनी अपनी भावना है कार्य, हम लोग ये देखते हैं वैष्णव के समस्त अंगों से ही उचिन में दिव्य अणु पर मांग निकलते हैं, उस वातावरण को शुद्ध कर देते हैं और वो हमारे हृदय में आकर के प्रवेश करके हमारे हृदय को भी भगवान के चरण, तब उनके चरणों की बड़ी महिमा है। जहां भी देखो शास्त्र में भगवान के निखार बिंद से भी अधिक उनके चरणों के ऊपर जी कह रहे हैं बंदे स्त्री पादरेण वाले चरण की, कोई भी भक्त वो भगवान के चरणों की, भक्तों के चरणों की ही वंदना कर देता है। सब हमने कभी पैरों के तक छूने का मतलब क्या, मैं शरणागत होकर के आपकी कृपा के लिए छू रहा हूं, यह तभी तो नएगा। इसलिए श्रद्धा के साथ उनके जाने से प्रणाम पहले होगी, प्रणाम का तात्पर्य अभिमान छोड़ता तुम तो ये नारद जी त्याग कीजिए, नारद त्याग ने उनको प्रणाम किया। ये त्याग जी स्वयं भगवान है, नारद जी को प्रणाम, मेरा चित्त नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा ये मुझे पता नहीं लग रहा, ये किस लिए तुम्हारा मन खिन्न है, आपने बताइए क्यों, क्या कारण क्या है मेरा मन खिन्न हो रहा है। आपने तो सब संसार भी छोड़ दिया, आपने इतने धर्म ग्रंथों की रचना की, क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि कृष्ण की जैसी गोदाता महिमा लिखनी थी आपने वैसा नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान ने आपने नहीं लिखा, अब तक लोगों को भ्रम में डाले हुए हैं। दुर्गा जी आराध्या है, संतोष मैया है, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, गणेश जी हैं, या कौन है, या नारायण हैं, या नृसिंह देव जी हैं, या रामचंद्र जी हैं, या चौबीस अवतार में से कोई है, या कृष्ण द्वारकाधीश मथुरेश और वृंदावन में एक ही है, उनमें से कौन से उपासक है, कोई ठीक आपने स्पष्ट नहीं दिया, आप स्पष्ट रूप से पढ़े और आज तक उनकी सबसे श्रेष्ठ जो आराधना है किसने की और वो श्रेष्ठ आराधना क्या है ये भी आपने दे, आप इस चीज को करना है, लोगों को स्पष्ट निर्देश और दिशा मिले ये कैसे भजन हम करें, किसका भजन पहले से तो ये तो मैं तो जानता नहीं है तो ठीक, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, गोपियों की आराधना सबसे श्रेष्ठ है, आप इसकी अनुभूति कीजिए, ये तो विवाद क्या है कृष्ण का भजन कीजिए और कृष्ण सबसे आराध्य श्रेष्ठ, अनुभूति नहीं होने से संपूर्ण रूप से कैसे उनका भजन करेगा, ज्ञान एक चीज है और अनुभूति एक चीज है, बहुत चीजों का ज्ञान हमको है अनुभूति में, इसलिए जब अनुभूति है तो उसको कहते हैं विज्ञान, मैंने कहा ये कैसे मुझको विज्ञान मिले जो दूसरों को भी बतला सको, हाँ निश्चित होकर कह यही ठीक है, अच्छा ठीक है, भक्ति के विचार से अनकंडीशनल सरेंडर भगवान को करो, मेरे प्रयास से कुछ नहीं होगा ये तुम्हारे अंदर में आए और ये प्रभु आप करुणा की वर्षा करें जिसे आपको मैं फर्स्ट जान सकूं, ये है भक्ति, जब तक अपने बल का घमंड है, न्यायमात्मा प्रवचन न लभ्य न वेद में आ गो न लभ्य तस्मात्मा भी गुणते, ये बल के द्वारा शारीरिक बल से शारीरिक बुद्धि से शारीरिक पांडित्य से कितनी भी सूक्ष्म बुद्धि हो
2% लोग बहुत मसे लाखों करोड़ों में से उनको ईशा के पास कृष्ण को अपना रहा है
उनकी सेवा, अब लाखों करोड़ों में से कोई एक है जो संबंध युक्त होकर के कृष्ण की सेवा में प्रविष्ट, तब उन्होंने नाम आरंभ कर दिया, भगवान की कथाओं को सुनना आरंभ कर दिया, धीरे धीरे वही जो कृष्ण की सेवा की वासना थी अब वो अंकुरित होकर के पुष्ट होते 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 लता होकर के दो पत्ते निकले, फिर दो पत्ते फिर हजार पत्तों से भर गई और ऊपर में उसमें मंजरी में फूल आ गए और फूल के बाद में उसमें फल, ये फल आना हुआ क्या, ये रुचि आशक है फूल, और इसमें फल लगना क्या हुआ, प्रेम आब आने लग गया, पकड़ गया वो रस हो गया, भक्ति रस हो गया, ये जगत में भक्ति रस होना भी बड़ा कठिन, करोड़ों में से करोड़ों की मैं से करोड़ों में कहती, बाकी हम कर सकते हैं अभी भी हम सुन, अभी ये भक्ति है सुनना होता, भक्ति रस नहीं, अभी रस मिलने से छोड़ सकते
रस नहीं,
तो कब आएगा भाव अवस्था में थोड़ा सा रस का आभास मिलेगा, उस समय हृणकश भी आकर के कहेंगे जैसे ये नहीं करने देंगे, अच्छी बात किंतु उसका रस छूटेगा, बीस देंगे मारेंगे काटेंगे इधर करेंगे उधर करेंगे, किंतु ये भी परीक्षा लेते हैं भगवान, किंतु जो समर्थ होता है सबकी परीक्षा नहीं देते, अभी हम परीक्षा लेने आएंगे तभी तो हम फिरे भी हैं, अभी तक कहानी कहाँ गिर जाएंगे, अभी परीक्षा देने लायक भी फर्स्ट क्लास में भी परीक्षा देने लायक भी, अभी तो हम ही लोग परीक्षा लेंगे तो गिर जाएंगे, हमसे उन्नत कोई हमारी परीक्षा है तो हमें भी गिर जाए, आ रही है समझ में, बहुत ऊंचा हम लोगों का
बाकी ऐसा है जो कृष्ण भगवान है वो तो अंतर्यामी है जैसा बता रहे हैं, फिर वो परीक्षा क्यों लेते हैं, उनको तो आदमी की स्थिति मालूम है ना,
हाँ
ये कितना आगे बढ़ चुका है,
हाँ
ये कितना सक्षम है
वो समझता है, कि जीव को उन्होंने कुछ स्वतंत्रता दे दिया, उसको ये चीज को अनुभूति कराने के लिए ये तू कितने जल में खड़ा है,
ये भगवान अपने लिए नहीं कर रहे, हमें अपनी स्थिति
को अनुभूति करा रहे हैं, जैसे कि एक प्रोफेसर है या टीचर है प्रिंसिपल है वो जानता तो है
कि लड़का कहाँ पे है,
जानता जी लड़का पास कर जाएगा या लड़का फेल करेगा, तो अभी परीक्षा किस लेते हैं, जैसे ये बेईमान प्रोफेसर है ये बिना परीक्षा किए हुए ही हमको ये कह दिया जैसे तुम फेल है तुम पास है और तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट है तुम क्लास में फर्स्ट है, ये सब ऐसा कहें, इसलिए भगवान पर दोष लेने लगे, इसलिए भगवान ऐसा,
भगवान
लेकर
कितना विश्वास है
ताकि उनमें दोष
न लगे,
आपको पता लगे
आपको कितना विश्वास है भगवान,
हमको अभिमान है ये मुझको तनिक भी मोह नहीं है। जैसे नारद जी को था, उनको था ये जैसे मैं जगत में किसी भी वस्तु से स्त्रियों के प्रति आसक्त नहीं हो सकता, काम हमारे अंदर नहीं। क्यों हुआ? क्यों? शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, किस लिए? किसने भस्म किया?
वो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं।
नहीं, उनको क्रोध आया, हमको डिस्टर्ब कर रहा है जैसे क्रोध आया। क्रोध किस लिए होता है?
किसी कार्य को
अपने उद्देश्य में इंटरफेरेंस,
इंटरफेयर कर रहा है, बस क्रोध हुआ उन्होंने जला दिया। और नारद जी तपस्या कर रहे हैं, उस समय में काम आया और बहुत तरह से तंग किया, ये मुस्कुराते रहे, काम इनके चरणों में गिर करके। उन्होंने कामदेव पर विजय नहीं पाई, शंकर ने, उन्होंने क्या किया? शंकर ने क्रोध आया और क्रोध से उसे जला दिया, तो वो अपने आप क्रोध के शिकार हो गए,
विजय कर पाए,
विजय नहीं पाए,
बात भी नहीं रह पाई।
और इधर नारद जी क्या किए? स्त्री मेनका और सब स्त्रियां आई, कामदेव ने ऐसा प्रकृति को सजाया जिसे अपने आप लुभावना हो जाए, उसमें कितने अस्पराम को उन्होंने भेजा, कितने प्रकार की भाव होंगी थी, और वो उनका ध्यान छुटा कर देखा तो मुस्कुराने लगे कामदेव, और वो सब उनके चले गए, वो तो चले गए। अब यह बात उनके अंदर में थोड़ी सी आई, थोड़ी सी अभी घुसी, अपना जैसे अपने गुरु जी को या अपने पिताजी को जरा कहा जाकर, पिताजी आज हमारे ऐसे हमारी तपस्या में विघ्न आराधना में विघ्न डालने के लिए कामदेव अपने समस्त परिवार के साथ आया, और मैं मुस्कुरा दिया तो बड़ा लज्जित हुआ और चला गया, हमको क्रोध भी नहीं आया। देखो ये बात तो ठीक है, ये कहना हमको एक बार ऐसा हुआ, बड़ा मुश्किल हो गया, संभाल नहीं सका, इसलिए तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे अंदर में ये चीज नया ने पाया जी, मैंने कामदेव को दिया, किसी से कहो मत, भगवान का भजन करो, उनसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे अंदर में ही अस्थायी ऐसा ही भाव है जो तुम काम कर सके। मना करने पर भी अब गए गुरु जी के यहाँ, शंकर जी उनके गुरु,
नारद जी,
नारद जी के सदाशिव उनके मैंने गुरु के लिए उनको मानते हैं, तो वो गए उनके पास में हंसते हुए, प्रसन्न हुए, आज तो बहुत सुंदर आप देख रहे, बड़े प्रसन्न हुए,
आज तो चेला गुरु के आगे एक स्तर आ गया।
बस उन्होंने कह दिया जैसे देखिए आपने तो उनको भस्म किया था, किंतु मैंने मुश्किल मुस्कुरा करके और उनको समझा दिया, और वो मान गए, और हमारे शिक्षकों मानी से शिव जी गंभीर हो गए, बात तो ठीक है, इसको भगवान की कृपा मानना, तुम अपने ऊपर में मत लो ये मैंने ऐसा किया, तो विष्णु से मत कहना किसी हाथ में, पर जब विष्णु से नहीं कहा तब किसे कहा? विष्णु के पास में भगवान बैठे हुए थे बड़े, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जैसा आपके अतिरिक्त ऐसा कोई कर नहीं सकता, भाई उसकी प्रशंसा की नाग एकदम फूल करके टूटे हो गए, फिर वो चलने लगे, भगवान ने कहा जी इसका ऑपरेशन करना है, ये नासूर हो गया, भगंदर हो गया है, पहले तो वो थोड़ा सा था, ये भगंदर होकर थे, अब ये चिकित्सा के बिना ठीक नहीं, बस उन्होंने ऐसा किया, जबकि मित्र एक पृथ्वी के ऊपर एक बड़ी सुंदर नगरी तैयार की, अद्भुत सुंदर, और उसने एक राजा को बनाया, उस राजा की एक बड़ी सुंदरी अस्पताओं से भी सुंदर, अब वो 16 वर्ष की है, एक ही दिन के अंदर में, एक ही मिनट के अंदर में ही ऐसा सब हुआ, नारद जी आ रहे हैं, उन्होंने देखा जिसे राजा के अपनी लड़की के लिए स्वयंवर कर रहा है, राजा ने उनसे